नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिलायंस समूह की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ईशा अंबानी और दो अन्य लोगों को कंपनी का निदेशक बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जियो फाइनेंशियल ने शेयर बाजारों को इसकी सूचना दी। जियो फाइनेंशियल की सूचना के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 15 नवंबर 2023 को जारी पत्र में ईशा अंबानी, अंशुमान ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया को कंपनी का निदेशक नियुक्त किए जाने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में कुछ महीने पहले ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जुलाई सितंबर तिमाही में अपना एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना होकर 668.18 करोड़ रुपए रहने की बात कही है। अप्रैल जून तिमाही में यह 331.92 करोड़ रुपए था। सलाहकार फर्म ग्रांट थॉर्नटन ने बृहस्पतिवार को कहा कि अक्टूबर में हुए विलय एवं अधिग्रहण सौदों का मूल्य सितंबर की तुलना में 41% घटकर $2.15 अरब रहा। सितंबर में $3.65 अरब मूल्य के सौदे हुए थे। ग्रांट थॉर्नटन भारत ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भले ही सौदों का मूल्य अक्टूबर में गिर गया, लेकिन सौदों की संख्या के लिहाज से ये बढ़कर 122 पर पहुंच गया। सितंबर में कुल 107 सौदे हुए थे। फर्म में साझेदार शांति विजेता ने कहा कि सौदे की मात्रा स्थिर थी, लेकिन अक्टूबर में बड़े लेन देन नहीं होने से सौदों के समग्र मूल्यों में गिरावट आई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में सबसे बड़ा विलय एवं अधिग्रहण सौदा रिलायंस रिटेल वेंचर्स द्वारा सुपर ड्राई की परिसंपत्तियों की $4.8 करोड़ में खरीद का रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद कर रही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश मंडप का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक राजस्व अधिशेष राज्य है और बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ चुका है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कभी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बीमारू राज्य कहा जाता था। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश देश की वृद्धि के इंजन के रूप में उभर रहा है। विज्ञापन उद्योग की स्वनियामक संस्था ASCI ने कंपनियों द्वारा खुद को भ्रामक रूप से पर्यावरण अनुकूल दिखाने यानी ग्रीन वॉशिंग से बचने के लिए बृहस्पतिवार को विभिन्न दिशा निर्देशों का प्रस्ताव रखा। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI इस संबंध में 9 सूत्रीय मसौदा लेकर आई है। ASCI ने एक बयान में कहा कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य ग्रीन वॉशिंग की जाँच करना है। ग्रीन वॉशिंग विज्ञापन या मार्केटिंग का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों को भ्रामक रूप से यह समझाने की कोशिश की जाती है कि किसी संगठन के उत्पाद, उद्देश्य और नीतियां पर्यावरण के अनुकूल हैं। ASCI के मुख्य कार्यकारी एवं महासचिव मनीषा कपूर ने बयान में कहा कि ग्रीन वॉशिंग पर रोक लगाने संबंधी दिशा निर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ता हित में विज्ञापन में पारदर्शिता और प्रामाणिकता की संस्कृति को बढ़ावा देना और उन्हें जानकारी परक निर्णय लेने में मदद करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए GST सेवा केंद्रों के माध्यम से बायोमीट्रिक माध्यम से आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी गई है। सीतारमण ने तिरुपति CGST आयुक्त कार्यालय में GST भवन के शिलान्यास समारोह में कर अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीतारमण ने डिजिटल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि GST सेवा केंद्रों के माध्यम से बायोमीट्रिक के जरिए आधार प्रमाणीकरण की मंजूरी आंध्र प्रदेश के लिए दी गई है। तिरुपति आयुक्त कार्यालय ने पिछले साल 8,264 करोड़ रुपए और सितंबर तक 5,019 करोड़ रुपए का GST संग्रह किया है। पिछले कुछ वर्षों में आयुक्त कार्यालय ने काफी प्रगति देखी है और GST व्यवस्था में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। सरकार ने ई कॉमर्स मंचों के जरिए असुरक्षित उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने के इरादे से इन मंचों के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। ये समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसमें प्रमुख ई कॉमर्स मंच, स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ, उद्योग निकाय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सदस्य शामिल हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि ई कॉमर्स मंचों के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा बनाने पर हितधारकों के साथ चर्चा की गई है। बैठक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित उत्पादों की बिक्री को सुनिश्चित करना था। बयान के मुताबिक विभाग ने सुरक्षा प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो ने अगस्त में 32.4 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। इसके साथ उसके वायरलेस कनेक्शन की संख्या 44.57 करोड़ को पार कर गई है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने ये जानकारी दी। ट्राई के मासिक आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के महीने में भारतीय एयरटेल को 12.17 लाख वायरलेस ग्राहक मिले और उसके मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 37.64 करोड़ हो गई। दूसरी तरफ नकदी संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने इस महीने में 49,782 कनेक्शन गंवाए। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया के वायरलेस ग्राहकों की संख्या घटकर 22.82 करोड़ रह गई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।